मेरे अजीज़ दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 3 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे 5I के बारे में कुछ बातें करूंगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात की थी चैंपियन, जिसका संबंध हमारे जो MSME के जो उद्योग हैं उनसे था चैंपियन। कल मैंने आपको बताया था कि शायद चैंपियन नाम इसलिए रखा गया होगा कि इसके माध्यम से हमारे जो छोटे लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको हम चैंपियन बना सकें, उनकी तलाश करके उन्हें आवश्यक सहायता दे करके आगे बढ़ने में मदद कर सकें। अखबार में ये बात लिखी हुई थी, लेकिन इनफैक्ट वह तो उसका एक उद्देश्य था। यहां जो चैंपियन नाम रखा गया है दोस्तों, ये आप यूं कह लीजिए कि जो चैंपियन की स्पेलिंग है यह उसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो पूरा नाम है उसे मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, चैंपियन CHAMPION। इसका पूरा नाम है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। मैं एक बार इत्मीनान से धीरे धीरे फिर से पढ़ देता हूं, यदि आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस, यानी कि यह एक ऐसी आधुनिक प्रक्रिया है जो क्रिएट करेगी और हारमोनियस लाएगी, उनमें एकीकरण भी लाएगी, उनमें सामंजस्य भी स्थापित करेगी एप्लीकेशन करने में, उसका उपयोग करने में। क्यों? फॉर इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ाएगी, क्या बढ़ाएगी? द आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन, निष्कर्ष परिणाम एंड नेशनल स्ट्रेंथ, और हमारी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाएगी, हमारे उत्पादन को बढ़ाएगी और हमारी राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत बनाएगी। मैं अब एक साथ पढ़ रहा हूं दोस्तों, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। दोस्तों निसर्ग चक्रवात के बारे में आज अखबारों में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा और कल टीवी चैनल पर भी इस पर काफी कुछ बताया गया और जो NDRF के जो हेड हैं उनसे बातचीत भी की गई। अभी अभी एम्फन से हमें छुटकारा मिला था और निसर्ग चक्रवात, और इसे भी एक तरह से सुपर साइक्लोन कहा जा रहा है, वह आने को है। यह अरब सागर में उठा है, कल मैंने आपको बताया था कि चूंकि यह अरब सागर में उठा है तो हमारा पश्चिमी घाट इससे प्रभावित होगा। जो पूर्वी घाट है वो बंगाल की खाड़ी है, उसमें अभी एम्फन आया था, तो अब इससे जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां संकट की खबरें हैं। देखिए ये क्या क्या स्थिति बनती है। ये जो निसर्ग नाम है ये बांग्लादेश का दिया हुआ है, और तूफानों के नामकरण कैसे किए जाते हैं इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, और हमारे जो क्लास के जो ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उनको एक बकायदे लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, कल मैंने शायद इसकी चर्चा की भी थी। तो बेहतर होगा कि आप एक बार देख लें कि नामकरण इसका कैसे किया जाता है निसर्ग। दोस्तों एक नाम अभी आप लगातार न्यूज में भी सुन रहे हैं पिछले लगभग 2 महीने से और अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, ICMR। मुझे लगा कि इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोगों के पास होनी चाहिए क्योंकि हम सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ICMR इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। बेसिकली ये हमारा जो बायोमेडिकल का जो फील्ड है इसमें रिसर्च करने का काम करता है, और दोस्तों ये बहुत पुरानी संस्था है। 1911 में यानी कि ब्रिटिश समय में यह संस्था बनी थी, लेकिन उस समय इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। चूंकि सिविल सर्विस एग्जाम में इस तरह से पूछ लिए जाते हैं इसलिए मुझे ये बात आप सबसे को बतानी पड़ रही है। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा IRFA। जैसा कि आजादी के बाद हुआ कि बहुत से संस्थाओं के नाम हमने अपने ढंग से रखे, तो 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया। दोस्तों पूरे देश में लगभग 30 इसके इंस्टीट्यूशन और सेंटर हैं जहां बकायदे बायोमेडिकल से क्षेत्र में रिसर्च होते रहते हैं। और जब मैं बायोमेडिकल क्षेत्र में रिसर्च होने की बात कह रहा हूं तो आप जो हमारी बीमारियां हैं, खासकर ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, मलेरिया है और जितनी इस तरह की बीमारियां होती रहती हैं, इन पर लगातार रिसर्च होता रहता है। इसकी एक काउंसिल होती है, इसका एक परिषद होता है और उस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये जो संस्था है, ये हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके अंडर में यह संस्था काम करती है। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी ही आपके लिए पर्याप्त होगी। और ये जो मैंने 30 जो इनके परमानेंट रिसर्च सेंटर बताए हैं, ये हमारे देश के अलग अलग स्थानों पर हैं, जैसे भोपाल में भी है, पटना में भी है, पुणे में है, इस तरह से अलग अलग स्थानों पर इनके रिसर्च सेंटर हैं जो जरूरतों के हिसाब से लगातार रिसर्च के काम में लगे रहते हैं। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी मेड इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड का नारा दिया है। अब अभी तक देखिए कि हम जो बात कह रहे थे मेड इन इंडिया, पहले मेक इन इंडिया था, फिर मेड इन इंडिया हुआ और अब उसमें एक नया शब्द और जुड़ गया है, मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, यानी कि आप भारत में बनाइए लेकिन दुनिया के लिए बनाइए। मतलब हमारा जो उत्पाद हो वो केवल हमारे अपने ही देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हो। तो यहां आपको एक तरह का एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की जो बात कही थी, अब यहां आपको उसमें एक विस्तार सा दिखाई दे रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने 5 I की बात कही और इसे ही मैंने अपने मुख्य विषय के लिए चुना है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि ये 5 I क्या है। दरअसल सच पूछिए तो लगातार एक ही बात अलग अलग तरीके से कही जाती है, कहने का एक अंदाज होता है, उसमें नवीनता आ जाती है, उसमें प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ चीजें बिल्कुल स्थायी सी होती हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड, तो सवाल ये उठता है कि हम ऐसा कर कैसे पाएंगे। हम अपना औद्योगिक विकास करें, जबरदस्त रूप से विकास करें और इस तरीके से विकास करें कि हम पूरी दुनिया के लिए उत्पादन कर सकें। सारी चीजों का नहीं, लेकिन कम से कम उन चीजों का तो जो स्थानीय रूप से, जिनमें हम बहुत समृद्ध हैं, जिनमें हमारी कुशलता बहुत अच्छी है। तो ऐसा कैसे संभव है? तो इसके लिए उन्होंने 5 I की बात कही है। आई इंग्लिश का है, FGHII। तो अब आप देखिए कि 5 I क्या हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को अगर आप कभी नोट कर लेंगे तो निबंध में भी ये बातें काम में आती हैं और अर्थव्यवस्था के संबंध में जब आप कुछ लिखेंगे तो उसमें तो काम आएगी आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। तो जो पहला आई है वो है इंटेंट। इंटेंट का मतलब है इरादा, इरादा, इरादा होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे। पहला इंटेंट। तो चलिए, तो एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन की बात हो गई, क्योंकि अगर उद्देश्य ही नहीं होगा, इरादा ही नहीं होगा, इच्छा शक्ति ही नहीं होगी, तो सीधी सी बात है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा है फिर इंक्लूजन, समावेशन। आई इंक्लूजन, समावेशन। समावेशन का मतलब है कि हमें पूरे देश को लेकर के चलना होगा, चाहे वो हमारे देश के लोग हों, मजदूर से लेकर के उद्यमी तक, एंटरप्रेन्योर तक, हमारे देश के हर प्रत्येक क्षेत्र के लोग हों, सभी को लेकर के, चाहे वो गरीब वर्ग का व्यक्ति हो, धनी वर्ग का व्यक्ति हो, या सरल शब्दों में कह लीजिए कि हमें मिलकर काम करना होगा। इंक्लूजन, जिन्हें हमने किनारे छोड़ दिया है, या हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारे काम के नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, उन्हें भी लेकर चलना होगा। और अभी खासकर प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। तो दूसरा है इंक्लूजन, यानी कि समावेशन। तीसरा है इन्वेस्टमेंट, निवेश। दोस्तों हमारे पास आप देख रहे हैं कि रिसोर्सेज बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन कैपिटल की कमी है। तो भारत लगातार इसीलिए विदेशी निवेश की बात करता है कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन करेंसी आए, ताकि हमारे पास जो पूंजी की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। जब फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो हमारे पास फॉरेन की टेक्नोलॉजी भी आएगी जो बहुत ही मॉडर्न है, उस मायने में भी हम पीछे हैं। तो केवल निवेश ही नहीं आएगा, कैपिटल ही नहीं आएगा, बल्कि उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसे उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जो चौथी चीज है, जिसके बारे में आप सब बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं और जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह है इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। आधारभूत संरचना। कोई भी देश बिना बुनियादी ढांचे के औद्योगिक विकास की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता, और अमेरिका अपने आप में इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है सफलता का, जिसके बारे में मैं आपसे इससे पहले चर्चा कर चुका हूं कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, और खासकर जब वहां महामंदी का दौर आया था, तो अमेरिका ने एक ही बात पर ध्यान केंद्रित किया कि हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। और जब एक बार उनका बुनियादी ढांचा डेवलप हो गया, तो इसके बाद जो औद्योगिक गति की रफ्तार थी वो रोके नहीं रुकी। भारत में जो औद्योगिक ढांचे की स्थिति है वो आप सब बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जब तक हम अपनी आधारभूत संरचना को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक औद्योगिक विकास का सपना मुझे लगता है कि रात में देखे जाने वाले सपने की तरह ही अव्यवहारिक बना रहेगा। और खासकर अभी जब 20 लाख का जो पैकेज दिया गया है, जब उस विषय पर हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स जो दिए थे, 3-4 पॉइंट्स, उसमें एक पॉइंट ये भी दिया था कि सरकार को अभी यहाँ चाहिए था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लेकर के आती। ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से जब हम तैयार करते तो वो पैसा ऑटोमेटिक लोगों तक पहुँचने लगता, और उससे ऑटोमेटिक तरीके से डिमांड भी क्रिएट हो जाती। क्योंकि अभी जो सरकार कोशिश कर रही है वो एक तरह से स्टिमुलस के रूप में ही कोशिश कर रही है कि कैसे इस अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था में मांग क्रिएट की जाए। खैर, वो एक अलग बात है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो पांचवा है वह है इनोवेशन। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने कहा कि जब हमारे यहां इन्वेस्टमेंट आएगा तो फॉरेन टेक्नोलॉजी भी आएगी, और याद रखिए कि जब फॉरेन टेक्नोलॉजी आती है तो फ्री में नहीं आती है, है ना। वहां कॉपीराइट, जो बौद्धिक संपदा कानून है, वो काम कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कोई दवाई बनाई और उस दवाई के लिए अमेरिका के किसी फार्मूले का हमने उपयोग किया, तो हमने जिसके फार्मूले का उपयोग किया है और हम दवाई बना रहे हैं, हमें उसको रॉयल्टी देनी होती है, और उससे बहुत बड़ा पैसा हमारा जाता है। तो यहां उन्होंने इनोवेशन की बात कही है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, और भारत सरकार ने इनोवेशन के लिए कुछ प्रोग्राम्स शुरू कर रखे हैं। आपको उन सब के बारे में जानकारी होगी ही, वहां यहां उसे दोहराने की जरूरत मैं नहीं समझता। तो इस तरीके से देखिए, उन्होंने 5I की बात कही है, और ये 5I बहुत ही व्यावहारिक बातें हैं, मैं उन्हें रिपीट कर रहा हूं। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हिंदी में है इरादा, समावेशन, निवेश, बुनियादी ढांचा और नवोन्मेषता। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: उषा देवी, अनूप राज बारदोली जांजगीर से, सत्येंद्र प्रसाद, राजेंद्र कुमार पटेल महासमुंद छत्तीसगढ़ से, और पुलकित उषा सरकार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।